एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यहाँ ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर गौर करने वाले हैं जिसने वैश्विक चर्चा का रुख ही मोड़ दिया था। थॉमस एल फ्रीडमैन की द वर्ल्ड इज फ्लैट।
नमस्ते। ये किताब हाँ भले ही कुछ साल पहले आई हो लेकिन इसकी बातें आज शायद और भी ज्यादा मायने रखती हैं, है ना?
बिल्कुल।
फ्रीडमैन का तर्क है कि टेक्नोलॉजी और वैश्वीकरण की वजह से दुनिया एक तरह से सपाट हो गई है। मतलब जहां दूरी और सीमाएं वो पहले जितनी बड़ी बाधा नहीं रही।
हाँ, और ये समझना जरूरी है क्योंकि इसने हमारे काम करने, मुकाबला करने और यहां तक कि एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को गहराई से बदल दिया है।
सही कहा। फ्रीडमैन इसे वैश्वीकरण 3.0 कहते हैं। इसमें देशों और कंपनियों के साथ साथ अब व्यक्ति भी एक अहम खिलाड़ी बन गया है वैश्विक मंच पर।
तो आज की हमारी ये चर्चा इसी समतल होती दुनिया के ताने बाने को समझने की एक कोशिश होगी।
चलिए शुरुआत करते हैं लेखक से, थॉमस फ्रीडमैन। जैसे आपने कहा, वो कोई एकेडमिक विद्वान नहीं है बल्कि एक अनुभवी पत्रकार हैं।
हाँ, 3 पुलित्जर पुरस्कार विजेता, न्यूयॉर्क टाइम्स के विदेश मामलों के स्तंभकार और दशकों का दुनिया भर में रिपोर्टिंग का अनुभव।
जी, ये बातें उन्हें एक अनोखा नजरिया देती हैं।
सही कहा। उनकी खूबी ये है कि वो सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करते बल्कि जमीनी हकीकत को सामने लाते हैं।
बिल्कुल। वो बैंगलोर के कॉल सेंटर वर्कर से लेकर सिलिकॉन वैली के सीईओ तक सबसे मिलते हैं। उनकी पिछली किताब भी थी ना, द लेक्सस एंड द ऑलिव ट्री।
हाँ, उसने भी वैश्वीकरण को समझने में मदद की थी, लेकिन द वर्ल्ड इज फ्लैट ने तो जैसे एक नई बहस ही छेड़ दी थी।
तो इस किताब का मूल विचार क्या है, मतलब सार क्या है?
संक्षेप में कहें तो ये 21वीं सदी के वैश्वीकरण को समझने का एक फ्रेमवर्क है। फ्रीडमैन कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और राजनीतिक बदलावों ने एक ऐसा वैश्विक मंच तैयार कर दिया है
जहां ज्ञान और पूंजी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और आसानी से बह सकती है।
हाँ, और इससे व्यक्तियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और सहयोग करने की एक अभूतपूर्व क्षमता मिली है।
और यह समतलता, जैसा आपने पहले कहा, सिर्फ बड़ी कंपनियों या सरकारों तक सीमित नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रीडमैन का तर्क है कि इसने व्यक्तियों के लिए भी अवसरों का खेल बदल दिया है। वो किताब की प्रेरणा का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है।
हाँ, वो बैंगलोर वाला।
जी, उन्हें वो अहम मोमेंट भारत में बैंगलोर में इन्फोसिस के कैंपस में आया, जब उन्हें लगा कि अरे, दुनिया का कोई भी कोना अब काम का केंद्र बन सकता है अगर वहां प्रतिभा और कनेक्टिविटी हो।
उन्होंने देखा कि कैसे भारतीय इंजीनियर अमेरिकी कंपनियों के लिए रियल टाइम में काम कर रहे थे, जैसे जैसे वो बगल के कमरे में ही बैठे हों।
बिल्कुल। इसी अनुभव ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि दुनिया वाकई समतल हो रही है।
और ये किताब सिर्फ नेताओं या व्यापारियों के लिए नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस बदलाव को समझना चाहता है।
तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दुनिया समतल हुई कैसे? फ्रीडमैन इसके लिए 10 ताकतों या फ्लैटनर्स की पहचान करते हैं।
हाँ, ये वो बड़ी घटनाएं और रुझान हैं जिन्होंने मिलकर इस बदलाव को संभव बनाया।
क्या हम कुछ प्रमुख फ्लैटनर्स पर नजर डालें?
जरूर। पहला बड़ा धक्का था बर्लिन की दीवार का गिरना 1989 में।
हाँ, वो तो एक ऐतिहासिक घटना थी।
जी, पर यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। इसने दुनिया को देखने का नजरिया बदला। इसने दिखाया कि विचारधारा की दीवारें वो ढह सकती हैं, और इसने पूर्वी यूरोप और अन्य बंद अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया।
अच्छा।
और दूसरा, फिर आया नेटस्केप का आईपीओ 1995 में। ये वो पल था जब वर्ल्ड वाइड वेब वो आम लोगों तक पहुंचा।
हाँ, नेटस्केप ब्राउजर ने इंटरनेट को इस्तेमाल करना बहुत आसान बना दिया था।
बिल्कुल। और इसके साथ ही वो फाइबर ऑप्टिक केबलों में भारी निवेश हुआ
जिसने दुनिया भर में डेटा भेजने की लागत को लगभग शून्य कर दिया।
हाँ, वही वो कनेक्टिविटी की रीढ़ बनी।
और एक चीज शायद जो उतनी दिखती नहीं पर बहुत जरूरी है।
आप वर्कफ्लो सॉफ्टवेयर की बात कर रही हैं।
हाँ, बिल्कुल। ये वो तकनीकी मानक और सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम और लोगों को एक साथ मिलकर काम करने देते हैं।
सोचिए, ईमेल, एसएमटीपी, वेब पेज दिखाने वाले मानक एचटीएमएल और कंप्यूटरों को जोड़ने वाले नियम TCP/IP, इन सब ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर दुनिया भर में कहीं भी भेजा जा सकता है
और फिर आसानी से जोड़ा जा सकता है। कमाल है।
यही से आउटसोर्सिंग का रास्ता खुला। इसकी शुरुआत तो वो Y2 के संकट से निपटने के लिए हुई थी, याद है?
हाँ, जब कंपनियों को अपने पुराने कंप्यूटर कोड ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामर चाहिए थे,
और भारतीय IT कंपनियां
वो इस मौके पर खरी उतरी।
लेकिन जल्द ही कंपनियों को समझ आ गया कि अरे, ये मॉडल सिर्फ कोड ठीक करने के लिए नहीं है,
बल्कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, यहाँ तक कि एक्सरे पढ़ने जैसे ज्ञान आधारित काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है।
बिल्कुल, ये तो हुई काम करवाने की बात, लेकिन सामान पहुंचाने में भी क्रांति आई, जिसे फ्रीडमैन सप्लाई चेनिंग कहते हैं।
वॉलमार्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शायद।
हाँ, बेहतरीन उदाहरण है। उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसी ग्लोबल सप्लाई चेन बनाई जो उत्पादन से लेकर स्टोर के शेल्फ तक हर चीज को रियल टाइम में ट्रैक और मैनेज करती है। इसने लॉजिस्टिक्स को बेहद कुशल बना दिया।
और एक और फ्लैटनर जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगता है वो है इन्फॉर्मिंग,
यानी अपनी मर्जी से जानकारी ढूंढने और पाने की क्षमता।
हाँ, गूगल जैसे सर्च इंजनों ने इसे संभव बनाया। अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठकर लगभग किसी भी विषय पर गहराई से जानकारी हासिल कर सकता है।
जिसने ज्ञान पर कुछ लोगों या संस्थानों के एकाधिकार को तोड़ दिया है ना?
बिल्कुल।
इन मुख्य ताकतों के अलावा फ्रीडमैन कुछ और चीजों का जिक्र करते हैं, जैसे ऑफशोरिंग,
उत्पादन को दूसरे देश ले जाना।
हाँ।
और इनसोर्सिंग,
वो जब कोई बाहरी कंपनी आपके अंदरूनी काम संभाल ले,
जैसे UPS टोशीबा के लैपटॉप रिपेयर करता है।
बिल्कुल भाई। और अंत में स्टेरॉइड्स।
स्टेरॉइड्स, ये क्या है?
ये वो नई टेक्नोलॉजी है जैसे वायरलेस कनेक्टिविटी, VoIP यानी इंटरनेट पर फोन कॉल करना, और फाइल शेयरिंग, जो बाकी सभी फ्लैटनर्स को और ज्यादा ताकतवर, तेज और मतलब हर जगह मौजूद बनाती हैं।
अच्छा, तो ये 10 ताकतें अलग अलग समय पर उभरी, लेकिन असली जादू तब हुआ जब इनका, आपने कहा, ट्रिपल कन्वर्जेंस।
हाँ, तीन संगम। ये थोड़ा समझने में मुश्किल लग सकता है पर महत्वपूर्ण है।
हाँ, इसे सरल शब्दों में कैसे समझे?
पहला संगम तो इन 10 फ्लैटनर्स का एक साथ आना और परिपक्व होना था। लगभग 2000 के आसपास ये सब मिलकर एक नया वैश्विक मंच बना चुके थे,
एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसा।
हाँ, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ लोग, सॉफ्टवेयर और कंपनियां पहले कभी नहीं देखे गए तरीकों से जुड़ सकते थे, सहयोग कर सकते थे और प्रतिस्पर्धा कर सकते थे।
ठीक है, मंच तैयार हो गया, दूसरा संगम क्या था?
दूसरा संगम था जब कंपनियों और व्यक्तियों ने इस नए मंच का इस्तेमाल करने के लिए अपने काम करने के तौर तरीके बदले।
मतलब?
उन्हें समझ आया कि पुराने ऊपर से नीचे वाले वर्टिकल तरीके अब उतने कारगर नहीं रहे। अब जरूरत थी ज्यादा क्षेत्रज, हॉरिजॉन्टल तरीके से सोचने और काम करने की।
यानी टीमों में सहयोग करना, जानकारी साझा करना, सीमाओं के पार मिलकर काम करना, इस तरह की चीजें।
बिल्कुल।
और तीसरा संगम, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा बदलाव लाया होगा।
हाँ, निश्चित रूप से। तीसरा संगम था जब चीन, भारत, रूस और पूर्वी यूरोप के पूर्व कम्युनिस्ट देशों के लगभग 3 अरब लोग,
3 अरब,
हाँ, वैश्विक अर्थव्यवस्था के खेल में शामिल हुए। ये लोग पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था से लगभग कटे हुए थे।
अब वे अपनी शिक्षा, प्रतिभा, महत्वाकांक्षा और हाँ, कम लागत के साथ इस समतल मैदान पर आ गए।
जी, इसने प्रतिस्पर्धा को कई गुना बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही नए बाजार और नवाचार के अभूतपूर्व अवसर भी पैदा किए हैं। फ्रीडमैन इसे ग्रेट सॉर्टिंग आउट कहते हैं।
ग्रेट सॉर्टिंग आउट मतलब जहां नौकरियों, कौशलों और उद्योगों का बड़े पैमाने पर पुनर्मूल्यांकन हो रहा है।
सही।
तो इस पूरी उथल पुथल का विकसित देशों जैसे अमेरिका पर क्या असर हुआ? फ्रीडमैन ने कुछ चिंताएं भी जाहिर किए हैं ना?
हाँ, उन्होंने इसे शांत संकट या क्वाइट क्राइसिस कहा। उनकी चिंता थी कि अमेरिका विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग में अपनी बढ़त खो रहा है।
और उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया।
बिल्कुल, उन्होंने जोर दिया कि शिक्षा व्यवस्था को रटने रटाने से आगे बढ़कर रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच
और समस्या समाधान पर ध्यान देना होगा।
और यही उनका वो मशहूर फॉर्मूला आता है, CQ+PQ IQ।
हाँ, यानी क्यूरियोसिटी कोशेंट, जिज्ञासा और पैशन कोशेंट, जुनून, सिर्फ इंटेलिजेंस कोशेंट बुद्धिमत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगातार सीखने की इच्छा और अपने काम के प्रति जुनून, यही इस नई दुनिया में आगे बढ़ने की कुंजी है।
बिल्कुल।
ये दिलचस्प है। दूसरी तरफ विकासशील देशों के लिए ये समतलता क्या मायने रखती है? क्या ये उनके लिए सिर्फ अवसर ही अवसर है?
अवसर तो बहुत बड़े हैं। अगर कोई देश सही नीति अपनाता है, शिक्षा और बुनियादी ढांचे, खासकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करता है, तो वो इस वैश्विक अर्थव्यवस्था से सीधे प्लग एंड प्ले कर सकता है।
मतलब जुड़ सकता है और फायदा उठा सकता है।
हाँ, भारत और चीन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी और वैश्विक जुड़ाव का इस्तेमाल करके लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला।
लेकिन ये भी सच है कि जो देश शायद राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार या निवेश की कमी से जूझ रहे हैं, वे समतल दुनिया के फायदे उठाने से चूक रहे हैं और शायद शायद और पीछे छूटते जा रहे हैं।
दुनिया पूरी तरह समतल नहीं है, ये भी सच है।
अच्छा, और कंपनियों के लिए क्या संदेश है? उन्हें इस नई दुनिया में कैसे टिके रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए?
कंपनियों को भी अपनी सोच बदलनी होगी, उन्हें ज्यादा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल बनना होगा, सहयोग को बढ़ावा देना होगा और लगातार नवाचार करना होगा।
फ्रीडमैन अनटचेबल यानी अछूत नौकरियों की बात करते हैं।
हाँ, ये वो काम है जिन्हें आसानी से आउटसोर्स या ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। इनमें तीन तरह के लोग आते हैं।
कौन कौन?
एक, वो जो बहुत विशेष और अद्वितीय प्रतिभा वाले हैं, जैसे बड़े कलाकार, वैज्ञानिक। दूसरे, वो जो स्थानीय तौर पर जरूरी हैं, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, नर्स।
और तीसरे?
तीसरे, वो जिनमें जटिल मानवीय संपर्क, रचनात्मकता और समस्या समाधान की जरूरत होती है, जैसे अच्छे मैनेजर, सलाहकार, शिक्षक। कंपनियों को ऐसी वैल्यू बनाने पर ध्यान देना होगा जिसे आसानी से कॉपी या कहीं और शिफ्ट ना किया जा सके।
लेकिन इस समतलता का एक भू राजनीतिक पहलू भी है और शायद एक स्याह पक्ष भी। फ्रीडमैन की डेल थियरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन क्या कहती है?
ये एक आशावादी सिद्धांत है, आप कह सकते हैं। फ्रीडमैन का तर्क है कि जैसे जैसे देश डेल जैसी कंपनियों की वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनते जाते हैं, उनके बीच युद्ध की संभावना कम होती जाती है।
क्यों? इसका क्या कारण है?
क्योंकि युद्ध से सप्लाई चेन बाधित होगी और सबका, मतलब सबका आर्थिक नुकसान होगा, तो आर्थिक निर्भरता शांति को बढ़ावा दे सकती है।
सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा सच होता है?
ये एक बड़ा सवाल है, और फ्रीडमैन खुद मानते हैं कि यही समतल दुनिया जो सहयोग और व्यापार को आसान बनाती है, वही टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सस्ता संचार, आसान पैसा ट्रांसफर।
हाँ, वो आतंकवादी समूहों जैसे अलकायदा को भी ताकत देती है।
बिल्कुल, वे इसका इस्तेमाल भर्ती करने, प्रोपेगेंडा फैलाने और हमलों की योजना बनाने के लिए करते हैं। तो समतलता एक दोधारी तलवार है।
और इसके अलावा दुनिया के बहुत से हिस्से अभी भी असमतल हैं।
हाँ, जहाँ गरीबी, बीमारी, हिंसा और तानाशाही का राज है, और वे इस वैश्विक खेल से बाहर हैं।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहला तो यही कि वैश्वीकरण का एक नया दौर चल रहा है, 3.0, जहां व्यक्ति की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है।
दूसरा, अब सफलता के लिए सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हैं, बल्कि ये ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं। मतलब भौगोलिक लाभ कम हो रहा है, योग्यता और अनुकूलन क्षमता बढ़ रही है।
तीसरा, आजीवन सीखना और खुद को बदलते रहना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। और इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं
बल्कि जिज्ञासा CQ और जुनून PQ ज्यादा अहम है, IQ से भी ज्यादा।
चौथा, अकेले चलने का जमाना शायद गया। सहयोग, चाहे वो टीमों के बीच हो, कंपनियों के बीच हो या व्यक्तियों के बीच, सफलता के लिए जरूरी है। वो क्षैतिज मॉडल ज्यादा कारगर हैं।
और पांचवां, ये समतलता जहां अपार अवसर लाती है, वहीं गंभीर चुनौतियां और जोखिम भी पैदा करती है। नवाचार और वैश्विक समृद्धि के साथ साथ नौकरियों का जाना और सुरक्षा संबंधी खतरे भी हैं।
अगर हम भारत के संदर्भ में सोचें तो ये बातें बहुत बहुत प्रासंगिक लगती हैं। क्या हम ये समतलता महसूस नहीं करते?
बिल्कुल करते हैं। नौकरियों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, खासकर युवाओं के लिए, लेकिन साथ ही स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी में नए अवसरों का विस्फोट।
तकनीकी कौशल का महत्व कितना बढ़ गया है।
हाँ, और शिक्षा पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव भी शायद इसी का नतीजा है।
किताब में कई यादगार पंक्तियां हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे, जाहिर है मूल मंत्र दुनिया समतल है, ये अपने आप में एक शक्तिशाली विचार है।
बिल्कुल। एक और विचार है, जब दुनिया समतल हो तो आपको नवाचार करने के लिए प्रवास करने की आवश्यकता नहीं है।
ये बताता है कि प्रतिभा कहीं से भी उभर सकती है और योगदान दे सकती है। आपको सिलिकॉन वैली जाने की जरूरत नहीं।
हाँ, आप बैंगलोर, हैदराबाद या कहीं से भी वैश्विक प्रभाव डाल सकते हैं।
और वो फॉर्मूला जिसे हमने पहले भी छुआ, CQ + PQ = IQ, ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ होशियार होना काफी नहीं,
जिज्ञासु और जुनूनी होना ज्यादा जरूरी है। सीखने की संस्कृति पर जोर देता है।
अंत में डेल थ्योरी, जो आर्थिक जुड़ाव और शांति के बीच एक संभावित लिंक सुझाती है, भले ही ये बहस का विषय हो।
जी, ये सभी विचार दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी और वैश्वीकरण सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि समाज और राजनीति को भी बदल रहे हैं।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
व्यक्तिगत स्तर पर शायद सबसे जरूरी है लगातार सीखते रहने की आदत डालना, उन कौशलों पर ध्यान देना जो अछूत हैं।
रचनात्मकता, संवाद, टीम वर्क, जटिल समस्याओं को सुलझाना, ये सब।
हाँ, करियर के लिहाज से किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करने की क्षमता, नेटवर्क बनाने की कला और बदलाव को अपनाने की मानसिकता, ये भी उतनी ही जरूरी है।
शायद अब जनरलिस्ट होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्पेशलिस्ट होना।
हाँ, कह सकते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बड़ा बदलाव मांगता है ना?
बिल्कुल, सिर्फ जानकारी देने की बजाय बच्चों को सोचना, सवाल पूछना, सहयोग करना और नई चीजें आजमाना सिखाना होगा। उन्हें ऐसी दुनिया के लिए तैयार करना होगा जो लगातार बदल रही है।
और सरकारों और नीति निर्माताओं के लिए,
उनके लिए इसका मतलब है डिजिटल हाईवे बनाना, शिक्षा को भविष्य के लायक बनाना और ऐसे नियम बनाना जो नवाचार को बढ़ावा दें। साथ ही उन लोगों के लिए सुरक्षा कवच तैयार करना जो इस बदलाव की दौड़ में पीछे छूट सकते हैं।
अगर मुझसे पूछा जाए कि इस किताब से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या लगी, तो वो शायद बदलाव की रफ्तार है और उसका पैमाना। जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने चीजों को बदला है, वो अकल्पनीय है।
हाँ, ये बात तो है।
और हाँ, CQ+PQ वाला विचार भी मुझे बहुत व्यवहारिक और जरूरी लगा।
मेरे लिए समतलता का दोहरा चरित्र, मतलब अवसर और जोखिम का एक साथ होना, ये सबसे अहम सबक है। ये याद रखना जरूरी है कि हर टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं।
सही कहा।
और सहयोग का बढ़ता महत्व भी एक सकारात्मक पहलू है जो दिखाता है कि जटिल समस्याओं का हल मिलकर ही निकाला जा सकता है।
आया है।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये समतलता वाकई सबके लिए बराबर है? या आज भी शिक्षा, भाषा, पैसे या बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की ऐसी अदृश्य दीवारें खड़ी हैं
जो बहुत से लोगों को इस समतल मैदान पर बराबरी से खेलने का मौका ही नहीं देती।
हाँ, इन बाधाओं को पूरी तरह हटाने के लिए और क्या करने की जरूरत है, इस पर सोचना चाहिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।